अब हम चलेंगे आयत नंबर 9 को पूरा करने के बाद आयत नंबर 10 पे। हमने क्या सीखा आयत नंबर 9 से? कि इस्लाम दीन हक है और इसी के अंदर अल्लाह ताला की मदद के सारे वादे हैं। अल्लाह का दीन गालिब रहेगा और अल्लाह के वादे सच्चे हैं और अल्लाह ताला अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। कितनी उम्मीद मिलती है ना, वी शुड बी होपफुल। कभी हिम्मतें तोड़ने वाली और लोगों को लेट डाउन करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। आज भी मुसलमान जिस दर्जे पे छोटी या बड़ी इनफरादी या इज्तमाई कोशिश कर रहे हैं, वो इस्लाम की एक गलबे के अंदर ही जाएगी इंशाअल्लाह ताला। गलबा इस्लाम, इसके कुछ मराहल हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको बताने, अदरवाइज़ आपके लिए लाइन ऑफ एक्शन क्लियर नहीं होती। तो पहली चीज़ देखिए कि आगाज़ दीन के इल्म से होता है। यानी हम जब कुरान और सीरत पढ़ते हैं ख़ास तौर पे, तो हम इस दीन के गलबे के राही हैं। तो मुबारक हो आप सब, अपने आप को गलबे दीन में पहले मरहले पे महसूस करते, क्योंकि इसके बाद ही रूह जागती है ना। इसके बाद पता चलता है कि अल्लाह के नबी और सहाबा कराम कैसी ज़िंदगियां बसर करके गए। फिर इसके बाद इल्मी मैदान में तरक्की करता है इंसान, इल्म पुख्ता होता है, कॉम्पिटेंसी पे आते हैं। हम शुरू में कुरान सीखते हैं थोड़ा सा, जैसे आप लोग सबीलुल जन्ना में जब आए तो बहुत ही हर चीज़ आपको नई नई लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब पुख्तगी आती जाती है, फिर कुरान पढ़ने सुनने से समझ आती है। लेकिन पूरा कुरान पढ़ने के मौके पर दिल में आने लगता है कि कमियाँ रह गई। होता है हर इंसान, शुरू में पहले दो तीन पारों की तो तफसीर रैप नहीं होती, तजवीद आती ही नहीं। तो उसके लिए फिर आप लोगों को नूरुला नूर मिल जाता है, कॉम्पिटेंसी पे आना, कमियों को दूर करना। जो रह गया पूरे कुरान का दौर, दोहराई, तर्जमा दोहराना, ये पुख्तगी है। तो जो एक दफ़ा इल्म लेकर बैठ जाएगा ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और हम जहाज़ में जाएँ और हम कहें हमें जहाज़ चलाना आ गया, तो ये गलती कुछ लोग करते हैं। एक दफ़ा कुरान पढ़ा, कहते अब हम पढ़ाने लग गए। पढ़ाइए, यही तो मकसद है, यही तो काम कर रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले पढ़ना और सीखना, ट्रेनिंग, एक साथ रहकर कई चीज़ों पे तनकीद होती है, वो सब करके जब पुख्तगी हो, एक मेथडोलॉजी के साथ चलिए। यानी मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि जितना मुझे अपने किसी साथी को जो हमारे साथ जहाँ कुरान सीखता है उसको पढ़ाते देकर खुशी हो सकती है, उतनी किसी को नहीं होगी। और मेरे लिए हर उस्ताद को होती होगी। दुनिया में दो ही हस्ती हैं, एक माँ बाप और एक उस्ताद, जो आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चे जो माँ बाप के बस में ही ना रहे। और फिर आपको पता है कि बातें उस्तादों को मिलती हैं, लोग आपकी खूबी कहीं लाए ना लाएँ, किसी स्टूडेंट की, जैसे मेरे पास किसी ने एक दफ़ा वीडियोस भेजी और मेरे अपने बहुत अच्छे साथियों में से, यानी मेरे उस्तादों में उन्होंने भेजी। आप इनको जानती हैं? खैर, ऑफकोर्स मैं जानती हूँ। जो तनकीद होती है फिर वो आप तक आती है, ये तो खुद पर्दा नहीं कर रही, ये कैसे कुरान पढ़ा रही हैं। अब आप अगर जिस तरह हम यहाँ बैठे एक दूसरे में, अगर इस तरह आप मीडिया पे चले जाएंगे तो कोई ना कोई तो आपके ऊपर बात करेगा ना। तो ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी को क्या कहती है कि देखो अपने घर जाने से पहले यहाँ सीख लो, वहाँ बातें ना कराना। तो बातें हो ना हो, हर काम जो करे इंसान उसको बेहतरीन ज़ाब्ते के साथ करे तो उसमें खैर ही होती है। फिर उसके बाद देखिए कि मोमिन, मुखलिस और मोहसिन किरदार की तश्कील करके, आपको मुझे एज़ अ मदर अपने बच्चों को और एज़ अ उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को मोमिन का दर्जा, फिर उसके मुखलिस मोहसिन के दर्जे तक की किरदार साजी करनी है। इसके लिए करेक्टर बिल्डिंग लाजमी है। ये जितना वक्त लगा पीछे भी सूरह सफ़ के अंदर, हम जब ये किरदार साजी के लिए इतना वक्त लगता है, 14 आयते तो हम एक दिन में पढ़ते हैं सबीलुल जन्ना में, ये पूरी सूरत एक क्लास में 2-2.5 घंटे में बड़े आराम से होती है। लेकिन अब आपको मैं वही सिर्फ दे दूँ तो आप कहेंगे तुमने पहले ही पढ़ी भी है। तो ये सब चीज़ें जो बीच में आपको प्रैक्टिकल दिखाई भी जाती हैं, कभी सहाबा की मिसालें, कभी एक दूसरे मुसलमानों की, तो ये करेक्टर बिल्डिंग होती है कि कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे ये जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो सिर्फ थ्योरी तो नहीं पढ़ाते, वो साथ आपको प्रैक्टिकल भी कराते हैं। कोई रेसिपी सीख कर आप खाना नहीं पका लेंगे जब तक वो आपको किचन में लेकर नहीं जाएंगे। और देखिए आप तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह आप सुरखरू हो रहे हैं। जो लोग लगे हुए हैं जहाँ भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो किरदार साजी होती जाती है दिल में, आहिस्ता आहिस्ता ईमान फिर घर कर ही जाता है एक दिन। फिर इसी तरह इल्म की बुनियादों को अकीदे की बुनियाद पर दुरुस्त करके गलबे दीन में आप मदद करते हैं। इल्म की बुनियादें अकीदे की बुनियाद पर, अकीदा गलत हो जितना मर्ज़ी काम कर ले सब निल। यह ऐसी है कि आप 1 मिलियन इंटू 0 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिलियन भी ज़ीरो बन जाएगा। और फिर पांचवी चीज़ दावत और जिहाद। अल्लाह ताला हमें इस ग़लबे दीन में जहाँ हम खप सकते हैं वहाँ खपा लें। आगे चलते हैं, आयत नंबर 10 है, लिखिए बेहतरीन तिजारत, द बेस्ट ट्रेडिंग। पूरी आवाज़ से मेरे साथ पढ़िएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, हल क्या, अदुल्लुकुम, मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, अला तिजारतिन, एक तिजारत पर, तुंजीकुम, जो निजात दे तुमको, मिन अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से। क्या जवाब है अंदर से? जी अल्लाह ज़रूर बताइए, लेकिन आपने अभी सुना ही नहीं ना, आप तो पढ़ रहे थे। चलिए बा मुहावरा देखिए, फिर जवाब दीजिएगा अल्लाह ताला को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐमन वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतला दूँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? बोले तो जी अल्लाह ताला ज़रूर बताइए। यहाँ से अब एक मौजू शुरू हो रहा है, ज़रा सा लफ्ज़ों को लेके चले, मैं जहाँ तक पूरी बात आती है वहाँ तक लेके चलती हूँ, फिर इस पर इकट्ठी बात करती हूँ। लफ्ज़ों को देखिएगा, या युहा, ए वो लोगो, अल्लज़ीना, जो, आमनू, ईमान लाए हो, यानी मुराद क्या है यहाँ आमनू से? जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक की है। और आज हम अपनी ज़ुबान में क्या कहेंगे? जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा और इसकी गवाही दी है। और अमानत, अमन, ये सब ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। आप जब ईमान ले आते हैं ना, तो आपका नफ्स मुतमईन हो जाता है। जैसे खाना खा लेना तो तबीयत रिलैक्स हो जाती है, सो के उठ जाएँ तो थकन ख़त्म हो जाती है ना। ईमान ला कर तबीयत में एक निशात आ जाता है, शुक्र है मैं ठीक हूँ। और कहिए ज़रा एक दफ़ा दिल से कि शुक्र है अल्लाह नेमत ईमान पर, शुक्रन अल्लाह नेमत ईमान, नेमत इस्लाम। तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इस पे दिल की गहराइयों से शुक्र करना है। आगे सवाल शुरू होता है, हल क्या, अदुल्लुकुम, मैं रहनुमाई करूँ तुम्हारी। लफ्ज़ अदुल्लुकुम वही है जिसको उर्दू में अब दलालत कहते हैं, दलाल, दलील, किसी के ज़रिए किसी चीज़ की मार्फत का हासिल होना, जैसे अल्फाज का मानी पे दलालत करना, कभी इशारे होते हैं, कभी रमूज होते हैं, कभी लिखने का एक फ़न होता है ना, हर चीज़ दूसरी चीज़ पे आती है। जैसे अभी आप अपनी बुक में देखें तो उर्दू ज़ुबान में जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं ना, तो इस सारे अमल को दलालत कहते हैं। आप गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ABCD पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको फिर आगे बड़ी चीज़ें सीखने पर दलालत करती हैं। ठीक है, अरबी ज़ुबान में रहनुमाई करने के 5 लफ्ज़ हैं, दलील, हुज्जत, बयीना, बुरहान और सुल्तान। फ़र्क नोट कीजिएगा, दलील कहते हैं किसी चीज़ को पहचानने के लिए दूसरी चीज़ से रहनुमाई होना। जैसे अभी बात हो गई, आप कहते हैं ना जी दलील दिखाइए इस काम का, क्या इसकी दलील क्या है, ताकि फिर मैं ये काम कर सकूं, ये मुराद है। हुज्जत, एक मुसल्लम बात से नतीजे के तौर पर कोई दलील लेना, यानी इसमें और उसमें फ़र्क क्या है दलील और हुज्जत में, कि एक बात पहले से तय शुदा थी, मुसल्लमिन तस्लीम शुदा, और उससे एक नतीजा निकाल कर आप उससे एक दलील ले लेते हैं। और बयीना का लफ्ज़ अरबी में बहुत आम है, ऐसी दलील जिससे मुदई फरीके सानी की बात को बातिल करार दे सके। मसा आप देखिए, अदालत है, एक बंदा दावा दायर करता है किसी दूसरे पे कि उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, अब वो दूसरा बंदा आकर अपनी तरफ से दलील देगा, तो दावा दायर करने वाला अपने वकील को पेश करेगा या कुछ भी, तो यानी इसमें किस्म की कार्रवाई सी आ जाती है, और बिल आखिर दूसरे बंदे को झूठा करार दिया जाएगा, जिसने दावा दायर किया उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो इस चीज़ को बयीना कहते हैं। बुरहान कहते हैं ऐसी अकली या नकली दलील को जो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो। अल्लाह हमें ऐसी ही दलीलें दे दे कि जिसके बाद लड़ाइयाँ, झगड़े और इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। सुल्तान कहते हैं ऐसी दलील जो वही इलाही से वाज़ेह तौर पर साबित हो। उर्दू में बोलते फरमाने शाही, और अल्लाह सुबहाना ताला के लिए ये लफ्ज़ कुरान में आता भी है। तो क्या पता चला, अल्लाह ताला कहते हैं हल अदुल्लुकुम ला अला तिजारतिन, एक तिजारत पर। उर्दू में लफ्ज़ सुनते हैं तिजारत, ताजिर, वही लफ्ज़ है ये। ताजरा से नफ़ा कमाने के लिए रासुल माल को कारोबार में लगाना, इसको तिजारत कहते हैं। ताजिर फाइल का वजन है, ठीक है, तो जार जमा भी होता है इसका, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ ना कुछ लेना और देना। अच्छा, दो चीज़ें, एक है बिज़नेस और एक है ट्रेडिंग, फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है मोस्ट लाइकली। तो ये ट्रेडिंग होती है, तिजारत अल्लाह ने जो लफ्ज़ दिया अरबी ज़ुबान में। लफ्ज़ तिजारत के भी ज़रा मुतरादिफ़ देखिएगा, उर्दू में बोलते हैं बे व शरा, खरीदो फरोख्त, तो बा शरा और ताजरा। एक आप कह लीजिए सेलिंग, दूसरा है बाइंग और तीसरा है ट्रेडिंग। बा का लफ्ज़ होगा तो ख़रीदो फरोख्त करना, कोई कहता है हम एक चीज़ लेते हैं फिर बेच देते हैं फिर और ले लेते हैं, इसको बै कहते हैं। जबकि गरज ज़ाती ज़रूरत पूरी करना हो, यानी आप कोई चीज़ अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए ख़रीदे या बेचे, जैसे गाड़ी ख़रीद ली, सेलफोन ख़रीद लिया, बेच दिया, ये शिरा जब होता है ना, तो ख़रीदो फरोख्त करना जबकि गरज ज़ाती ज़रूरत पूरी करना हो, अलबत्ता इश्तरा ख़रीदने के मानों में आता है, यानी कभी कभी ये बेचने और कभी ख़रीदने दोनों में आता है। और तिजारत कहते हैं ख़रीदो फरोख करना जबकि असल गर्ज नफ़ा कमाना हो। अल्लाह ने यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से इस पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। तो इस छोटी सी आयत है, बात तो आगे जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इधर कितने खूबसूरत अंदाज से ये बता दिया, अल्लाह तुम्हें एक डील दे रहा है। लफ्ज़ डील, तिजारत, कारोबार और नफ़ा हमेशा इंसान की आंखों में चमक डालता है। ये सूरत पढ़ते हुए देखिए कि पहला रुकू जो हमारा पूरा हुआ ना, उसमें तरखीब थी, रखब था, ज़रा झंझोड़ने का अंदाज था ना, लिमा तकुलू ना माला तफलून, हाँ, फिर ज़रा सख्ती की बात थी, अल्लाह को ये पसंद नहीं वो पसंद है। तो पहली बात ज़रा डरा कर की, अब यहाँ रग़बत दिलाई जा रही है। अलीमानु बैनल खौफ़ वर रिजा, यानी हदीस में आता है बच्चे को कभी आप प्यार से बताइए कभी गुस्से से बताइए। तरबियत का ये खूबसूरत सा नुक्ता होता है कि जिसमें अल्लाह ताला आपको मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि तुम्हें दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी। पिछली आयत में गलबा इस्लाम की बात थी, कारे रिसालत की तकमील की बातें थी, यहाँ अहले ईमान की जिम्मेदारी है। दुनिया में कोई काम कुछ दिए बगैर नहीं होता, बच्चा भी दुनिया में आता है तो माँ दर्द सहती है तो फिर आता है ना। तो जब अल्लाह का ये फ़ैसला है कि दीन गालिब होगा, तो अल्लाह ताला यहाँ ईमान वालों को कहते हैं कि तुम्हें जान और माल को खपाना पड़ेगा। और शौक़ क्या दिलाया जा रहा है, हल अदुल्लु को मला तिजारतिन, इसको कहते हैं शौक़ का अंदाज़, तरगीब का अंदाज़, शाबाश देने वाला अंदाज़, तशवीक शौक़ दिलाने वाला अंदाज़। अल्लाह कहता है देखो देखो करोगे ये काम, आप अपने बच्चे से कहते हो ये काम करो फिर लॉलीपॉप दूंगी, ये काम करो टॉफ़ी मिलेगी, अच्छा ये करो तो आइसक्रीम खाने जाएंगे, यहाँ ये अंदाज़ है। तुम्हारी खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा, तुम्हें खिल्लतों से नवाजा जाएगा, ज़रा थोड़ा सा जम के तो आओ बग़ैर भौताव किए। देखिए एक चीज़ है, बंदा पहले भौताव कर लेता है, वो होता है नौकर, मुलाजिम, ग़ुलाम, कितनी देर कितनी फे, ड्राइवर है कोई, वो कहता है कितनी पे देंगे जी बाबू साहब, वो कहते हैं 15,000 रुपये दे देंगे, कितने बजे आना पड़ेगा जी 9 to 5, हफ्ते में 5-7 दिन एक छुट्टी देंगे, चला गया ख़त्म। वो सारा महीना गोलू के बेल की तरह जुतेगा, ये करे वो करे, और अगर छुट्टी कर ले तो साहब को गुस्सा आएगा कि नहीं, देर से आएगा तो जल्दी जाएगा तो आएगा ना, लेकिन एंड पे वो उसको 15,000 रुपये दे कर जान छुड़ा लेंगे। अब लिखिए एक और बात, बैठिए अंदर गाड़ी चलवानी है बैठ जाए, अब वो कोई भाव नहीं कोई ताव नहीं, बैठ जाइए। कभी टैक्सी में बैठे आप, इधर उबर में बैठे होंगे किसी में, वो मीटर चलता रहता है, कोई भाव तो नहीं किए, बैठ गए सारा दिन चलाइए जिधर मर्जी जाइए, एंड पे उस टैक्सी वाले को पैसे मिल जाते हैं। अल्लाह के काम ऐसे कीजिए, नौकर बनना है तो भाव तो कर लीजिए, मालिक बनना है तो फिर बगैर हिसाब किताब के आइए। नौकर नौकर होता है, मालिक मालिक होता है। अगर मालिक बनना है तो कान न हम बुनियानुम मरसूस, सीधी सी बात है, बस अभी इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ने यहाँ रग़बत दिला दी। और देखिए बीच सूरत में, सूरत का ऐन मज़मून कि बेसत मोहम्मदी का मकसद ग़लबा दीन, निफाज़ दीन, सिर्फ तबलीग नहीं। और अब उसके आ गई ये आयत और इसके बगली दो तीन आयतें, आपको इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक शौक है। देखो तुम यहूद की तरह ना होना जिनका जिक्र ऊपर आयत चार में पढ़ के आए हो, जिन्होंने अपने नबी को तकलीफ़ दी, ईज़ा दी। देखो नसारा की तरह ना होना जिन्होंने हज़रत ईसा के सारे मामलात को ही बदल दिया। अल्लाह ने उन दोनों को निकाल दिया, वो अपने मनसब से माजूल हो गए। आज अल्लाह तुम्हें दावत दे रहा है कि हल अदुल्लु को मला तिजारत इन तुंजी को मिन अज़ाब अलीम। तो क्या पता चला? अब यहाँ देखिए बात तो ऐसे ना, हल अदुल्लुकुम कि तुम ये करना चाहते हो और तुम्हें निजात देगा दर्दनाक अजाब से, लेकिन यहाँ ये साफ पता चल रहा है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर छुटकारा पाने की कोई उम्मीद ना रखो, फिर बचोगे नहीं। अगर तुम सिर्फ ये कहते हो कि सिर्फ ज़ुबान से ईमान का कलमा पढ़ने और अपने आप को ईमान अल्लाह कहने से बच जाएंगे तो ये खाम ख्याली है। सूरह अनकबूत के बिल्कुल शुरू में आता है, क्या हसीबन ना सोई युतरकुई यकूल आमन्ना बहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान किया कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ये कहने पे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश ना की जाएगी। तो आजमाइशें तो होंगी। तो आज आप और मैं इस्लाम का पौधा लगाना चाहते हैं, इस्लाम का झंडा थामना चाहते हैं, तो इसमें जो मुशक्क़त आए दे दो। अब अगली आयतों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह ताला फिर आपको उस डील पे कुछ और बातें कहेंगे। बिल्कुल ऐसी ही आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बियन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और माल ख़रीद लिए हैं। अल्लाह हमारे भी खरीद, देखिए हर एक चीज़ को ख़रीदता, आप बाजार जाए सारी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, कहते हैं ये घटिया, इतना पुराना, इतना बड़ा प्रिंट, ये इतना अच्छा नहीं है, मैं नहीं लेती। आप क्या लेते हैं? वट एवर यू लाइक इट। अल्लाह किसकी चुन रहा है? काफिर की जान अल्लाह नहीं चुन रहा, मुनाफिक की नहीं चुनता। अल्लाह कहता है मेरे नहीं पसंद के ये लोग जली मतकूलून माला तफलून कबूरा मक्तन इन अल्लाह हन तकूलू माला तफलून, बातें तो तुम इतनी बड़ी करते हो तो अमल किधर है? हाँ अल्लाह सिर्फ मोमिनों की चुनता है। अल्लाह हमें ऐसे मोमिन बना दे जिनके ऊपर अल्लाह हाथ रख के कह दे इट्स माइन। कभी दुकानदार बेच रहा होता है ना तो एक बंदा कहता है ओके ये मैंने ले लिया, अब दूसरे देख रहे नहीं 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 सौदा डन डन डन। कभी देखा तो करे जो कुछ बहुत और दुनिया में आज हो रहे हैं। आप अपने आप कैसा बनाइए कि अल्लाह आप पे उंगली रखे, मैंने तुम्हें लेना है, मैंने तुम्हें नहीं जाने देना, मैंने तुम्हारे बगैर ये काम पूरा नहीं कराना। काम तो हो जाएगा मेरे दीन का, गालिब तो होगा, लेकिन तेरे बगैर मैंने नहीं करना। ये मान तो दीजिए अल्लाह को, ये प्यार तो दिखाइए अपने रब को, फिर देखिए आपका रब आपके साथ क्या करता है, किस तरीके से अल्लाह ताला आपको लेता है। फिर अल्लाह कहता है तुंजीकुम तुंजीकुम तुंजीकुम, जो तुमको निजात देगा। और निजात के लफ्ज़ को आज समझ जाए ना, ये सारी दुनिया की जकड़ बंदियों से निकल जाए, ये तौक हैं गले के। मोमिन को तो अपने जिस्म में रूप हंसी हुई भी तौक में लगती है। दुनिया का हर मौका, घर है नेमतें, बच्चे हैं नेमतें, तिजारत है नेमतें, पर मोमिन का दिल अल्लाह के काम में लगा होता है। वो घर भी चलाता, वो कारोबार भी करता, लेकिन मोमिन का दिल मस्जिद में लगता है, एक मोमिना का दिल अल्लाह के घर में लगता है। हम सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे लेकिन हमारे दिल अल्लाह के घरों में लगे होंगे। हम भाग भाग के जाएंगे फिर आ जाएंगे, हम भाग के आएंगे क्योंकि हमें निजात चाहिए। ये दिल आपको यानी किसी चीज़ से अलग होना होता है ना निजात, तुम जी को मैं अल्लाह बता रहा है कि ये है तुम्हारी वो दुआ की कबूलियत कि अल्लाह दुनिया के गमों से निजात दे दे, औलादों के सदमों से निजात दे दे, घर वालों की तकलीफ़ों से निजात दे दे, मुझे इस तरह कर दे वो कर दे। तो लिखिए क्या है खुलासा, निजात का लफ्ज़ किसी मुसीबत के छूटने के लिए, और इसके साथ एक और लफ्ज़ लिखिए फाज, फौजन, फायज़ा, फौजिया, फौजान, ये सब उर्दू में बोलते हैं। किसी मुसीबत से छूटने के साथ साथ किसी मरगूब चीज़ से हम किनार होने के लिए आता है। यहाँ आप मुझे कुछ कहने दीजिए, दैट इज़ नॉट द पीक ऑफ जन्ना। इस सौदे में हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम, अल्लाह ने आपको हाईएस्ट दर्जे नहीं दिखाए अभी जन्नत के, जस्ट फर्स्ट थिंग कि जहन्नुम से बच जाओगे. आई विल सेव यू फ्रॉम दी हेल फायर. दिस इज़ द लीस्ट मिनिमम दर्जा. वो फौजुल मुबीन तो वो आगे पढ़ेंगे आप. सूरह तगाबुन में आता है, सूरह हदीद और क्या कुछ जगह. कुरान का मिजाज तो देखिए लफ्ज़ों में, जान छुट जाएगी तुम्हारी जहन्नुम से और दुनिया जहन्नुम नहीं बनेगी. किस चीज़ से निजात देगा? मिन अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब से. और अज़ाब पता क्या लफ्ज़ है? टू स्नैच. अज़बुन अरबी में कहते हैं मीठे को. सूरह फातिर में आता है हाज अज़बुन फ़रात, मीठा पानी, स्वीट वाटर. और अज़ाब के फॉर्म में जब आता है ना, तो मिठास को छीनना, टू स्नैच द स्वीटनेस. क्या आज नेमतों में से मिठास निकली हुई है? घर हैं, खुशी है, औलाद है, फरमाबरदारी है, तन्हाई बांटती हमारी औलाद. हम बच्चों की खुशियों में खुश हैं, अल्लाह करे हैं तो अल्लाह आपको मुबारक करे, बच्चों के भी खुशियाँ दे. लेकिन अमूमी तौर पर आज उम्मत मुस्लिमा भी अपनी नेमतों को इंजॉय नहीं कर पा रही. अल्लाह के नबी कहा करते थे, अल्लाह मला मानी अली माँ आतईत वला मोती अली माँ मनात वला यनफौजल जद्दी मिन कल जात. तो मिन अज़ाब अलीम को दुनिया में देख लीजिए तो तुम्हारी दुनिया में अल्लाह मिठास वापस ले आएगा. ये तुम्हें घुटन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है. दौलत नहीं होती तो खाने को दिल करता है, खाने आ जाएँ तो खा नहीं सकते. इतनी अजीबोगरीब बीमारियाँ, लेकिन यहाँ अज़ाब अलीम, वो दर्द देने वाला अज़ाब. और आप अगर याद रखें ना, तो सूरह बकरा में ये अज़ाब अलीम किसके लिए आया था? मुनाफिकीन के लिए आया था. कुफार के लिए अज़ाब अज़ीम और मुनाफिकों के लिए अज़ाब अलीम. और यहाँ फ़र्क देख लीजिए तीनों का. अरबी ज़ुबान में अज़ाब के लिए तीन लफ्ज़ आपके सामने, हालांकि इससे भी ज़्यादा हैं. अज़ाब दुख, सज़ा, बुरे काम का बुरा बदला के मानों में काम लफ्ज़ है. इस तरह एक लफ्ज़ आता है इक़ाब. फ़कई फ़काना इक़ाब, सूरह कमरी की आयतों में बार बार आता है. फ़कई फ़काना नकीरी, अज़ाब के लफ्ज़ है. तो इक़ाब कहते किसी बुरे काम का इंजाम. अक़ब कहते बैक को, ये जो एड़ी होती है ना, हील्स, अक़ीबैन हील्स. तो इक़ाब होता है बुरे काम का बुरा नतीजा. आपने बुरा काम किया तो फिर भुगती है. बच्चे ने सर्दी में आइसक्रीम खाई और ऊपर से ठंडा पानी पिया, गला बंद हो गया. तो बहरहाल इक़ाब बुरे काम का बुरा नतीजा. बस का लफ्ज़ जो है ऐसी सज़ा जिसमें सख्ती भी हो और तंगी भी हो. तीन ही दिए हमने, लेकिन और भी. लेकिन नकीर का लफ्ज़ आता है अज़ाब के लिए. फ़कई फ़काना नकीर. नकीर इनकार इसी से है. नागवार, सख्त और गैर मुतवक्के अज़ाब. इसी तरह से वबाल का लफ्ज़ उर्दू में भी हम बोलते हैं. शदीद और मुतवत्तर अज़ाब, सख्त से सख्त अज़ाब. फिर मसूलात, ऐसा इबरतनाक अज़ाब जिसकी याद से उसकी तस्वीर आंखों के सामने फिरने लगे. लफ्ज़ मिसाल होता है ना, तो जिसको हम बेमिसाल नहीं कहते, एग्जेम्पलरी, मेमोरियल लिख लीजिए चलिए. और निकाल, हफ्ते वालों को मिली थी अनकाल, जिनको बंदर बना दिया था, तो इबरतनाक सज़ा के लिए आता है. तो क्या पता चला, आयत 10 ने ईमान वालों को ख़िताब किया. रब की पुकार, ईमान वालों के नाम. हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, इस्तिफ़हामिया अंदाज़ है, क्वेश्चनिंग स्टाइल है, ताकि बेदार हो जाओ. और ये बहुत प्यारा अंदाज़ होता है. क्या प्लान है भैया आपका, क्या इरादे हैं जी आपके? इसमें प्यार भी है, ज़रा सी डांट भी है, प्रवोक करना भी है. करें क्या? इस पुकार को दिल पे लीजिए. और याद रखिए, सरासर अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है. मेरे आपके बगैर अल्लाह का कुछ नहीं थोड़ा हुआ. उसकी कोई चीज़ में कमी नहीं आएगी मेरे आपके काम करने से या ना करने से. ना करने से ज़्यादती, ना आने से. वो तो दीन गालिब होना ही है. आज के दौर का सबसे बड़ा काम कि अपना नाम लिखा ले. कि अल्लाह कल जब आग बुझाने वालों में नाम होगा तो मेरा नाम हो. फितनों की आग, होमोसेक्सुअलिटी के ख़िलाफ़ की आग, एथियज़म के ख़िलाफ़ की आग, बेहयाई की, बेकारगी और बेमकसदियत के ख़िलाफ़ पुकार में ला, मेरा नाम बस लिख देना, मुझे बचा ले. मुझे इससे ज़्यादा टाइटल की उम्मीद भी कोई नहीं. मैं फ़र्स्ट नहीं आऊँगा, मैं सेकंड नहीं आऊँगी, मैं थर्ड नहीं आऊँगी. अल्लाह पास कर देना. आज की हर मुसलमान की ये दुआ होनी चाहिए. क्योंकि ऐसे वक्त में जब आग लगी और माँ नफिल पढ़ने लग जाए, आग लगी और माँ बैठ कर तस्बीह पे सुबहान अल्लाह की विर्द करने लग जाए, बच्चा जल जाएगा. दीन इस्लाम को आज से अपना बेबी समझिए, फिर आपको सारे फैसले करने एक मिनट में आसान हो जाएंगे. मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं क्या करती? और چونکہ تجارت کا لفظ اللہ نے دیا سوال کے لیے، کیونکہ پسندیدہ چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے اور عذاب سے بچنے کی ترکیب. اور یہاں یہ یاد رکھیں، یہ صرف لیسٹ منیمم پکار تھی.